ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिका ऐतदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तवैवास्मि नरिमाया विना इति विज्ञेयाधे तन्मे मां शरणम् अङ्गशालिनी यमुना के केसी घाट पर हम लोगों ने संकल्प लिया कि हमारा ब्रजमंडल परिक्रमा पूर्ण हो राधा प्राप्ति हो। इसके बाद में वैष्णव लोग यहाँ पर आए और उन लोगों ने श्रील गुरु पाद पद्म की महिमा कुछ वर्णन की। अभी हम श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी से गुरु महाराज की महिमा के संबंध में बोलने के लिए कुछ निर्देश देते हैं। 15 मिनट में सभी वक्ता लोग समाप्त करेंगे क्योंकि वक्ता अधिक हैं, समय भी कम है, इसलिए 15 मिनट तक आप गुरु पाद पद्म की महिमा का वर्णन कीजिए। ऊपर बसे जाए, ऊपर बसे जाए, बसे जाए, बस
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरतुषे नमः। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिद्धरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञानं केशव इति नाम्नि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जगदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण
यू कैन सी हियर
हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी को चरण सरोज में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राचार्य भक्ति स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित त्रिदंडपादगण एवं वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में आप यथाजोग प्रणाम स्वीकार। आज हमारी परम सौभाग्य दिन में श्री कार्तिक व्रत का प्रारंभ में ही हमारे गौर वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता नित्यलीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज की तिरोधान महामहोत्सव है। मानो आज श्री शरद पूर्णिमा की रास है, रास की प्रारंभ का दिन, मानो ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी का नाम श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है। इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जिसको जो नाम देते थे ऐसे नहीं जो आया और नाम दे दिया है, क्योंकि जो नित्य सिद्ध परिकर होते हैं वे अपना भक्तों का यदि उनका नित्य सिद्ध उनका जो परिचय को विषय वो भी जानते हैं क्योंकि वो नित्य सिद्ध परिकर है। इसलिए जब वे नामकरण करते हैं नाम के साथ साथ में भी उनका सिद्ध स्वरूप का भी वो परिचय देते हैं। इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उनका नाम ही उन्होंने विनोद बिहारी ब्रह्मचारी नाम रखा। विनोद मतलब जो कि राधा कृष्ण को लीला में जो विनोद मतलब जो आनंद प्रदान करने वाले। इसलिए मानो आज का दिन रास में ये विनोद मंजरी की कोई अभाव था, मान रास का प्रारंभ में भी उन्होंने आज का दिन हुए उनको अपना विनोद बिहारी को रास के अभाव से उनको मानो उन्होंने भुला दिया है। इसलिए आज का हमको तिरुभाव महामहोत्सव यहाँ पर तो एक तिरुभाव फिर दूसरे तरफ यहाँ महोत्सव हम प्रयोग शब्द प्रयोग करते हैं फिर जो विरह है ये दुख का कारण होता है। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न जब किया कि जगत में विरह मध्य सबसे बड़ा कौन क्या विरह है, दुख में सबसे बड़ा दुख क्या है, राय रामानंद कहते हैं कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देख पर जगत में सबसे बड़ा दुख जब कृष्ण भक्तों से हम बिछड़ जाते हैं। क्योंकि हम लोगों को परमार्थ जगत में भक्ति जगत में अगर कोई मदद करे तो ये वैष्णव लोग हमें उत्साह प्रदान करते हैं। जब से वैष्णव लोग ये पृथ्वी छोड़ करके चले जाते हैं फिर उसी समय ये जो पृथ्वी कृष्ण भक्ति भक्तों का विरह से ये पृथ्वी भी दुखी हो जाती है। और एक वैष्णव जगत में जन्म ग्रहण करने पर पुराण में बताया कुलम पवित्रम जननि कृतार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरेषां येषां कुले वैष्णव नाम है। एक वैष्णव अगर इसी जगत में जन्म ग्रहण करता है तब उनको पूर्ण धन्य हो जाता है। स्वर्ग में देवता लोग हाथ उठा करके नाचने लगते हैं, पूर्व पुरुष लोग पृथ्वी जिनका चरण का स्पर्श पा करके अपना जीवन को धन्यवाद धन्य मानती है। जितना दूर तक उनको दृष्टि जाता है वो सारा स्थान पवित्र हो जाता है। वो हाथ उठाकर नृत्य करने पर स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है। एक वैष्णव जगत में जन्म होने का इतना महत्व है, लेकिन जब एक वैष्णव ये पृथ्वी छोड़ करके चले जाते हैं उसी समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर कहते बोल हरिदास तुम इसलिए पृथ्वी रे शिरोमणि तुम्हा बिना रत्न सुन्न होइला मगे तुम पृथ्वी का सिर भूषण था लेकिन तेरे विरह में ये पृथ्वी का रत्न सुन्न होइला मगे ये पृथ्वी रत्न सुन्न हो गया है। इसलिए हम लोगों के लिए साधारण साधक के लिए गुरुपाद पद्म का विरह भक्त लोगों का संग से बिछोड़ना ये सबसे हमारा लिए दुखदायी है। एक तरफ में दुखद आएगा दूसरे तरफ में यहाँ पर विरह महोत्सव हम प्रयोग करते हैं बोले क्यों बोले कारण है कि यहाँ तो ये चले गए ये जगत छोड़कर जितने अपने नित्य वर्तमान है लेकिन उसी जगत के लिए जब एक मंजरी राधा रानी का आदेश को प्राप्त करके ये जगत में आ करके सारा जगत को कृष्ण प्रेम की बाढ़ की बंधना में जब संपूर्ण प्लावित करके आनंद जीवों को कृष्ण विमुख से निकाल करके कृष्ण भक्ति रूपी मंदाकिनी की धारा में उनको डुबाते हुए जगत में कृष्ण प्रेम की बाढ़ को बहाते हुए आनंद जीव को कृष्ण उन्मुख करके जब इस जगत से छोड़ करके अपना नित्य लीला में प्रवेश करते हैं वहां पर संपूर्ण राधा गोविंद श्रीमान महाप्रभु और सबके सब गोपियां मंजरियां उनके लिए स्वागत करते हैं। एक जीव इतने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति में लगा करके आए इसलिए वहां पर बहुत बड़ा महोत्सव वहां पर करते हैं। इसलिए यहाँ पर विरह महोत्सव मतलब जहाँ पर जाकर के नित्य लीला में अपना राधा रानी की सेवा में वो नियुक्त हो गए इसलिए यहाँ पर विरह महोत्सव बताए। ये महापुरुष ये ऐसे के महापुरुष थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी आश्रित नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार एवं मरना ये जो वाणी है महाप्रभु को भविष्यवाणी ये वाणी महाप्रभु अपना परिवारों को द्वारा जथा जो जैसे उन्होंने स्थापित किया है लेकिन अगर ये वाणी अगर संपूर्ण रूप में मुक्त प्रग्रह प्रीति को द्वारा अगर लगाया जाए तो ये संपूर्ण कहाँ लागू होता है यदि संपूर्ण ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद रूप में लागू होता है। ये राधा रानी की नयन मणि मंजरी निकुंज लीला में वो उसमें निकुंज लीला में ही वो राधा रानी की सेवा कर रही थी जहाँ पर राधा रानी नयन मणि मंजरी को आदर्श देती है हे नयन मणि मंजरी जाओ जगत में जीव कृष्ण विमुख होकर के कहाँ कहाँ भटक रहे हैं जाओ जीव को उद्धार कर और तुम अकेला मत जाओ जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सपार्षद शिव धाम सह अवतरी जैसे संपूर्ण परिकरों को लेकर के ये धरा धाम में आए तो उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी जगत में जब आए वो अकेला नहीं आए संपूर्ण गोलक वृंदावन से अपना परिकरों को लेकर किसी जगत में आए। इसलिए प्रभुपाद का जितने गण है ये कोई साधारण नहीं सबके सब राधारानी की निजन है और संपूर्ण प्रभुपाद परिकरों को लेकर आए हैं और ये परिकरों में एक जो मुख्य परिकर है जो कि प्रभुपाद ने सर्वत्र जो महाप्रभु का वाणी की प्रचार और प्रसार किया है तो प्रभुपाद स्वयं ये महापुरुष का आज हम श्रवण कर रहे थे जब बोले सरोजिनी माता जी बोले प्रभुपाद को आपका इतने बड़े बड़े आसान है पृथ्वी में सर्वत्र प्रचार और प्रसार करोगे आपको कौन मदद करेगा आपको पास में तो कोई है नहीं लेकिन प्रभुपाद ने बारंबार बोले यदि ये तो है ये तो हमारा विनोद तिहारी है सचमुच से उन्होंने जो वाणी बोले थे वास्तविक रूप में सही है उनको द्वारा तो प्रभुपाद कराया है लेकिन उसको बाद में भी जैसे अगर उनको बुला जाए श्री चैतन्य मनोभीष्टम वा श्री प्रभुपाद मनोभीष्टम स्थापितम जनभूतले इसलिए प्रभुपाद का जो मनोभीष्ट है जिन्होंने किसने भूतल पर स्थापित किया कहते स्वयं भक्ति प्रज्ञानम कदा वचम तथा सो पदातीत इसलिए कहते प्रभुपाद का मनोभीष्ट को हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज ने ही उन्होंने जगत में स्थापित किया है कहते उनकी मनोभीष्ट को किसने स्थापन किया है अगर बोला जाए श्री भक्ति प्रज्ञानम मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं नारायणम कदापजम ददाति सो पदाति अगर ये बात अगर बोला जाए तो कोई अतिथि नहीं है। उसी समय से ही प्रभुपाद ने इंगित किया था एक दिन ऐसे भक्ति प्रज्ञान गोस्वामी महाराज ने किए हैं कि वो नित्य से परिकर होने का ना तो उनको पता है। हाँ, कोई अगर वृक्षा को वृक्ष का परिचय किसी में कहते फले का परिचय दे, कहते फल के द्वारा ही वृक्ष का परिचय मिलता है। इसलिए मानो भक्ति प्रज्ञान की वो वृक्ष में जो फल रूप में व फूल रूप में आए, इसलिए ये बात को गौरी वेदांत समिति में कहते रहते हैं। इसलिए कभी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बैठे हुए थे और हमारे इनका शिष्य वर्ग बैठे हुए थे, किसी ने आ करके बोला कहते आपके पास में इतनी सारी खेती पड़ी हुई खाली खाली, आप उसको तो नहीं लगा दो, ठाकुर का सेवा में लगेगा। तो उन्होंने उसी समय बात इंगित गुरु को बताए थे कि ये तो पुष्प है, देखो ये सबके सब पुष्प है, यहाँ पर जब पुष्प खिलेगी कहाँ तक उसका खुशबू फैलेगी, थोड़ी दूर से उसका खुशबू फैलेगी, और वो जब फूल खिलेगा तब कब खिलेगा, एक दिन दो दिन तीन दिन, उसके बाद फिर मुरझा जाएगा। लेकिन ये सेवक रूप जो पुष्प है वो ऐसे खिलेंगे जिसका सौरभ जिसका सौष्ठव जिसका सौगंध जिसका सुकुमारता संपूर्ण पृथ्वी को देखती से माता के द्वारा तार प्रेम की समुद्र के द्वारा संपूर्ण जगत को प्लावित करेगा, ये जो पुष्प है वास्तव रूप में वो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वृक्ष रूप में जो पुष्प उसमें जो पुष्प जो खिले हैं, देखो एक एक पुष्प को विशेष कर तीन पुष्प खिले हैं, जो तीन पुष्प संपूर्ण जगत को उन्होंने उन्मात्त कर दिया, संपूर्ण जगत को उन्होंने अपना प्रभाव से संपूर्ण जगत को उन्होंने डुबा दिया है। और उसी पुष्प में देखो हमारे महाराज उसमें एक विशेष पुष्प है जिस पुष्प केवल भारत में नहीं साधारण किसी देश में नहीं संपूर्ण पृथ्वी को अपना सौरभ अपना सौगमार के द्वारा व अपना वात्सल्य रस के द्वारा संपूर्ण जगत को देखने से आप्लावित किया, जिस पुष्प की खुशबू में आप लोग जैसे भ्रमर लोग उसमें मादकता में मादकता को दान करके अभी आकर के वो पुष्प की चारों तरफ में आप लोग मंडरा रहे हो और वो पुष्प की सौगंध को आप लोग उसका सौगमार्गता उसका सुगंधता को आप लोग सबके सब ग्रहण कर रहे हो। इसलिए मान उसी समय प्रभुपाद ने ये बात को इंगित के द्वारा उन्हें बताए थे। इसलिए हर आचार्य के पास एक एक वैशिष्ट होता है, इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज में भी कुछ वैशिष्टता है। इसलिए महाराज का मुखारविंद जो सुना एक तो वैशिष्ट बताने का मैं कोशिश करूंगा। कहते जो श्री चैतन्य परमेश्वर स्थापित जन पुतले महाब्रह्मा जो मन अभीष्ट को जिन्होंने ये पृथ्वी पर स्थापन किया है, इसलिए महाप्रभु का जो आदेश था जो चार आदेश था कहते ये महापुरुष हम बताते हैं छह गोस्वामी हम बताते हैं क्योंकि छह गोस्वामियों ने महाप्रभु का जो मन अभीष्ट को उन्होंने जगत में स्थापन किया है। लेकिन सप्तम गोस्वामी हम कहते हैं ये भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर की महाप्रभु का मन अभीष्ट को उन्होंने जगत में स्थापन किया चार आदेश को। लेकिन ये महापुरुष का जीवन में अगर हम देखें ये भी कोई काम नहीं, ये संपूर्ण महाप्रभु के जो आदेश को जो चार जो आदेश को उन्होंने परिपूर्ण रूप में इसी जगत में स्थापन किया है। अगर इनको भी अगर हम सप्तम गोस्वामी बोले तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है, कोई ज्यादा बोलना नहीं है, वास्तव रूप में उन्होंने चार वैशिष्ट को उन्होंने स्थापन किया है। प्रथम जो आदेश था कहते ये विग्रह को स्थापन करना, कहते ये महापुरुष ने एक उन्होंने स्थापन की है जो कि अद्भुत एक अवलोकित रूप किए है। इसलिए हर मंदिर में देखो जितने सारे विग्रह है कृष्ण को काले रूप में देखने को मिलता है, लेकिन केवल गौड़ी वेदांत समिति में ही विग्रह केवल सफेद है और सब गौड़ी ठाकुर जी काले। इसलिए किसी समय कोई हमारे प्रभुपाद का कोई शिष्य ने पूछे महाराज जी ये साधा सफेद विग्रह क्यों स्थापित किया, क्योंकि सफेद जो विग्रह तो कम पैसा मिलता है, पत्थर काला पत्थर का ज्यादा पैसा मिलता है, बोले वो ये कम पैसा मिलता है इसलिए आपने ये साधा विग्रह स्थापित कर दिया। लेकिन कहते नहीं कम पैसा के लिए नहीं, कहते जो विग्रह आप क्यों स्थापन करते हैं, हाँ जैसे भक्त लोग जिस दिव्य नेत्र को द्वारा हाँ भक्ति भाव के नेत्र को द्वारा चिन्मय नेत्र को द्वारा अपना हृदय में हृदय से सदा के लोग रहते हैं, लेकिन अगर विग्रह को स्थापन करते हैं कि विग्रह क्या है, हृदय में जो उद्भास है जो विग्रह, हृदय में जो विग्रह को दर्शन करते हैं प्रेम प्रेमाधीन भक्ति विलोचन के द्वारा, उसी चीज को ही बाहर स्थापन करते हैं। इसलिए उन्होंने इस हृदय में इस सफेद विग्रह को दर्शन किया, इसलिए उन्होंने बाहर में भी सफेद विग्रह प्रकाश किया। और सफेद विग्रह क्यों प्रकाशित किया, लोगों ने बहुत कुछ बोले, इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एक अष्टक उन्होंने लिखा है जिसका नाम विनोद बिहारी तत्वाष्टक। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है क्या उसका अंदर में सिद्धांत है, उसका अंदर में साधारण लोग उनको बोलते तो ऊपर से बड़े कठोर है, लेकिन वास्तव रूप में वो श्लोक को पढ़ो और उसको श्लोक को परमेश्वर महाराज जी जो उसको ऊपर में जो वृद्धि उसको जो व्याख्या क्या है अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उनको एक एक श्लोक के अंदर में ये गौड़ीय वैष्णव जगत का संपूर्ण फिलोसफी, संपूर्ण रस सिद्धांत, संपूर्ण तत्व सिद्धांत संपूर्ण रूप में उसमें भरा पड़ा हुआ है। अद्भुत उसको अंदर में तत्व दर्शन उस श्लोक के अंदर में। इसलिए उन्होंने ये कृष्णा ये सफेद विग्रह है तो उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने उदाहरण दिया है। इसलिए कहते राधा चिंता निवेशेना जस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरण मध्ये राधा आलिंगित विग्रह। तब इसी श्लोक के ऊपर में उन्होंने बरहा पुराण से और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विलास स्वप्नामृत विलास अमृत से उन्होंने महाराज की पूरा उदाहरण देकर तुम्हें बताए हम लोग रूपानुग है, जो रूपानुग वो हर समय राधा रानी का तरफ में झुके हुए है, जिसको भक्तिमान ठाकुर ने कहा आमी तो राधिका पक्ष पाति सदा तब्बु नाही हरि ताके। इसलिए हम राधा रानी का पक्षपाती, जो राधा रानी का पक्षपाती वो ये चाहते हैं हमारे राधा रानी कृष्ण की चिंता नहीं करे, कृष्ण राधा रानी की चिंता करे, इसलिए हम लोग रूपानुग है। और राधा चिंता करते करते कृष्ण यहाँ पर सफेद हो गए, इसलिए हम तीन विग्रह एक ही रंग का, तीन विग्रह एक ही रंग का कारण क्या है, बोले कारण है यहाँ पर राधा रानी की ही वैशिष्ट्य है, राधा रानी की महत्व है। राधा रानी यही है महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु कौन, बोले कृष्ण, बोले कृष्ण क्यों आए, बोले राधा प्रणाम महिमा के दृशन जन अद्भुत मधुरिमा मध्य। इसलिए तीन कारण को लेकर आए जिसमें राधा रानी की विशेष महत्व है, इसलिए राधा भाव रूप सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, जिसने राधा रानी के अंतर्गत भाव को लेकर कहा है तो यहाँ पर किसकी महत्व है, राधा रानी की महत्व। इसलिए महाप्रभु गौरव राधा का राधा रानी है ये, और कृष्ण फिर कृष्ण की गौरव जहाँ पर कृष्ण राधा चिंता निवेशन वहां पर राधा या लिंगितम राधा या लिंगितम राधा या आलिंगितम महाराज इसका दो तरह का व्याख्या दिया है। एक तो जो राधा रानी का चिंता में संपूर्ण रूपी थी कृष्ण चंद्र, और क्या राधा या आलिंगितम जिस समय श्रीमान महाप्रभु श्री रायामानंद संवाद में जिस समय रायामानंद देखा वो जो काला विग्रह के ऊपर में एक स्वर्ण पंचर का एक चदर के द्वारा वो ठगे हुए, कौन ठगे हुए, कृष्ण ऊपर से एक स्वर्ण पंचर का द्वार चदर के द्वारा ठगे हुए। इसलिए जहाँ पर राधा रानी को द्वारा संपूर्ण कृष्ण आलिंगित हुए हैं, इसलिए कहते ये जो तीन विग्रह तत्व तो तीन नहीं जो तीनों ही एक रस में ही एक भाव में ही तीनों संपूर्ण डूबे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज को स्थापन की। ये एक गौड़ीय वेदांत समिति का आश्चर्य की वस्तु है। उनके दूसरे चीज इस समिति का नाम को रखा गौड़ीय वेदांत समिति, फिर सारे संन्यास का नाम भी को रखते है भक्ति वेदांत समिति को बने। इसे कभी भी समय श्री भक्ति रखकर श्रीधर महाराज ने एक प्रश्न किया, यदि सब सन्यासी का वेदांत वेदांत क्यों रख दिया, ये वेदांत बड़े हाँ करिए अक्सर करके ये ज्ञानी लोग जो शंकर संप्रदाय का लोग ही सब वेदांत वेदांत नाम रखते हैं, क्योंकि वेदांत सूत्र के ऊपर में श्री शंकराचार्य का एक भाष्य है, इसलिए अक्सर लोगों को पता है कि वेदांत ग्रंथ सब मायावादियों का, लेकिन यहाँ पर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनका नाम है भक्ति प्रज्ञान है, भक्ति का विशेष रूप में ज्ञान है, इनका नाम भी ऐसे नाम है, इसलिए उन्होंने बताया वेदांत तथा वैष्णव का ग्रंथ है। एक उसका नाम वेदांत है। वेदांत का मतलब है वेद का जो अंत, मतलब वेद का सार है। वेद का सार क्या है? निगम कल्प और ललितम फल। निगम मतलब वेद, वेद का कल्प कितना का जो परिपक्व जो फल, यानी श्रीमद् भागवत है। यदि श्रीमद् भागवत क्या तो सर्व वेदांत सार भी, सर्व वेदांत सार भी श्रीमद् भागवत, सर्व वेदांत का सार ही श्रीमद् भागवत है। यदि श्रीमद् भागवत में सर्वश्रेष्ठ रूप में किस चीज को स्थापन किया गया है? यदि श्रीमद् भागवत में दसम स्कंध को बताया भगवान अवतार युग, और उसमें जो पांच जो गीत है, यदि ये भगवान का पंचम प्राण है। ये जो पांच गीत में विशेष करके जो उद्धव जैसे व्यक्ति जहाँ पर ब्रज गोपियों की प्रेम की महिमा को देख करके जहाँ पर उनकी चरण की धूल बनना चाहते हैं, इसलिए भागवत का जो सार है ये ब्रज प्रेम ही, जिस चीज को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में देने के लिए आए थे। अनंत चरे चिराग कर्णयाव कृष्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसम सबंत श्रिया, वो जो उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए आए थे, यदि ये श्रीमद् भागवत का सार यही है। इसलिए हमारे श्री बलदेव पिता प्रभु वेदांत सूत्र पुत्र में गोविंद भाष्य लिखते हैं, जिस गोविंद भाष्य में दूसरे दूसरे संप्रदाय का लोग गोविंद भाष्य में केवल दास्य रस तक दिखाया, लेकिन हमारे बलदेव पिता कृष्ण प्रभु जिसने श्रृंगार रस तक दिखाया, जिसमें श्लोक है जन्मादश्यम जता। जब जन्मादश्यम जता साधारण लोग समझते हैं जिनसे जगत का सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, साधारण लोगों का धारणा है, लेकिन हमारे रसिक टीकाकार नहीं, आद्य रस जन्म जता, जिनसे आदि रस की प्रकट है। तद आदि रस क्या है? तद आदि रस ये श्रृंगार रस है। इसलिए वेदांत मतलब होता है अर्थ एवं ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र का अर्थ श्रीमद् भागवत है। इसलिए तद वेदांत सूत्र में तद अन्यादितरतस्य, तद अन्यादितरतस्य मतलब क्या? तद वेदांत सूत्र है अन्याद मतलब जहां पर कृष्ण अनुकूल नायक है, इतर तस्य मतलब जहां पर राधा रानी स्वामी पत्रिका, वह अन्याद जहां पर राधा रानी मार करके रासलीला से चली जाती है, श्याम सुंदर अन्याद मतलब पीछे पीछे, हे राधे अगर आप रास छोड़कर चले जाओगे तो ये रास किसके लिए है? इसलिए आप रास छोड़कर मत जा, इसलिए किसका सब रसिक, इसलिए ये भक्ति वेदांत का मतलब होता है। वेद का जो अंत ये श्रृंगार रस है, इसलिए जहाँ पर सन्यासी का जो वास्तव रूप में शास्त्र जानते हैं, जब भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत तीरथ, जब ये वेदांत शब्द का प्रयोग करें, इसका मतलब है ये सबके सब श्रृंगार रस के उपासक है। ये श्रृंगार रस होगा क्योंकि जिनको संन्यास का समय पर गोपी मंत्र दिया जाता है, इसलिए इस सब जैसे गोपी मंत्र को पा सके है, ये वेदांत का मतलब है। तो इन बातों में ये एक वैशिष्ट्य है। महाप्रभु का जो तीसरा आदर्श था लुप्त चित्त का उद्धार करना, हम लोगों ने श्रवण किया मायापुर जब नाथी व्यापुर दिया गया, लोग बोलते हैं जिसको मुसलमान संपूर्ण रूप में महापुरुष का जन्म स्थान को संपूर्ण रूप में कबरगाह बना दिया था, लेकिन ये महापुरुष प्रभुपाद की इच्छा को जान करके उन्होंने राधा रानी के सब मार्ग फेंक दिए, बड़े बड़े वृक्ष ला कर उन्हें लगा दिया, लगा करके वहां पर संपूर्ण परिवर्तन कर दिया। दूसरे दिन मुसलमान लोग देखा संपूर्ण रूप में उनका जो कबरगाह था संपूर्ण को काट बेटा फेंक दिया, वहां पर उन्होंने दखल कर लिया, पुलिस ने रिपोर्ट किया तो आकर के देखा कि तेरे कोई चिन्ह है नहीं, यदि ये महापुरुष ने ये काम किया है, इसलिए ये महापुरुष ने विभिन्न रूप में श्री प्रभुपाद का जो मठाधीश है उन्होंने विभिन्न विभिन्न रूप में उन्होंने स्थापन किया, विभिन्न ग्रंथ रूप में भी भक्ति जगत में जो प्रभुपाद का जो आरती तुलसी जो आरती एक मानो एक नई नई दिशा उन्होंने दिखाया है, और जो मायावाद के ग्रंथ जो स्थापन किया जिन्होंने पढ़े हैं मायावादी खंडन तो बहुत लोग पढ़े होंगे, लेकिन इनका जो मायावादी जीवन का पढ़ करके देखिएगा क्या उन्होंने साधारण रूप में कैसे कैसे युक्ति और कैसे कैसे उन्होंने तर्क दिया है जो तर्क कभी सुने नहीं कर चुके, कैसे उन्होंने जैसे श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिद्ध ग्रंथ का पहले में ही वहां पर ही गुप्ति गुप्ति स्प्रिया पिशाची क्यावत हृदयवर्त थे, भक्ति रस है ग्रंथ का नाम भक्ति रसामृत सिद्ध, लेकिन पहले में मायावादी खंडन करते हैं जितने सारे आचार्य आए वो जरूर ये मायावादी को खंडन किया, इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की कुछ बोलना चाहूंगा, इसलिए जितना देखो एकदम अवधान इस जगत में, इसलिए हम लोग उनके चरण में हम प्रणाम करते हैं। वे लोग जो सीखा, जैसे गुरु सेवा के आदर से सदर श्रवण किया, जैसे गुरु सेवा उन्होंने आत्मसमर्पण करके किया, जैसे प्रभुपाद के मनाभिष्ट को उन्होंने स्थापन किया, वे हम लोगों को बड़े आशीर्वाद करे, उनका अनुगत्य करें और उनको हाँ अनमोल शिष्य रूप में जो हमारे महाराज जी आए, जिनका अनुगत्य में अगर किसी तरह से जीवन को भक्ति में अगर हम पिता मांगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम यही बोल कर उनके चरण में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ।
बहुत सुंदर उन्होंने संक्षेप में गुरु महाराज की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने सन्यासियों का नाम भक्ति वेदांत क्यों रखा, समिति का नाम भी क्यों रखा गौड़ीय वेदांत समिति, ठाकुर जी का रंग सफेद या गौर वर्ण है, राधा जी का वर्ण ये कौन है क्यों है, इन सब का सुंदर रूप में विवेचन किया। और पद्मनाभ महाराज जी श्री गुरु महाराज जी के महिमा के ऊपर में कुछ वर्णन करेंगे।
Especially on this transcendental disappearance day festival, Viraha Mahotsav, His Divine Grace Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad, Shri Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, our beloved Param Gurudev, and my beloved Gurudev's sannyas and Sikhi Guru. My Pandavat pranams to all Vaishnavas and Vaishnavas. Every year on this day, first day of Kartik Vrat, we have this opportunity to remember the great stalwart preacher of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, the lion-like Acharya, by whose transcendental mercy and potency this Gaudiya Vaishnava Sampradaya has been saved from going into oblivion, from being lost due to Sahajiism, Mayavadism, and so many other contaminating philosophies that abound in Kali Yuga. So Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he is such a protector of this Sampradaya. If he had not come into this world, the great work of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who established the great Gaudiya Math with 64 months throughout India, who began the extension of the preaching of the Harinam Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu even in foreign countries like England and Germany. So the great work that that personality had done, if it were not for Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj saving that work by re-establishing the preaching mission after the disappearance of Srila Prabhupada, then the world today would not know of this Hare Krishna movement. Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj was practically at least one of the most intimate disciples of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. We could even say the most intimate, because his very life and soul was surrendered at the lotus feet of his Gurudev from the very early teenage life. And he became, under the direction of Srila Prabhupada, the manager, the superintendent of all the preaching, of all the management of the Gaudiya Math mission throughout India and throughout the world. He was managing everything so that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur could very freely preach the message of Mahaprabhu. And that great personality, known at that time as Sri Vinod Bihari Brahmachari, he was so bold and fearless in the service of his Gurudev. The very famous story that even he risked his life to save the life of his Gurudev. He is known throughout all the Gaudiya Math for this great feat, which is practically impossible to do. How he, in the Navadvip Parikrama, how he saved his Gurudev's life when they were attacked by so many Smartas and so many miscreants throwing glass and stones from the sky. And in all directions, everyone was chasing and running, trying to find shelter so they would not die. But Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, Vinod Bihari Brahmachari, he immediately protected his Gurudev and took him into a private room nearby. And in that room, he told his Gurudev, "I want to bring you to shelter, to safety in Sri Mayapur. But you cannot go dressed like sannyasi. They will find you. So I will take your dress and I will pose as you. And you take my white cloth. And in this way we can bring you safely to Sri Mayapur Dham." Srila Prabhupada at that time, he handed his sannyas vesh to Sri Vinod Bihari Brahmachari and his danda. And in this way Srila Prabhupada actually gave him sannyas. and endow him with all of his mercy and blessings. And in this way, he saved the life of his beloved Gurudev. Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, earlier in his life, he also received the blessings of the great Mahabhagwat, Param Mahabhagwat, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. He was the Gurudev of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And he was living the life of a completely transcendental avadhut in Sri Namadvip Dham. And toward the latter period of his life, he came and took up residence in one Dharmashala. And in the Dharmashala, he took up residence in a room where people passed stool, a very unclean place with very bad smell. And there he was doing his Harinam Bhajan. By that time, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, he had become very famous as a great Mahabhagwat. And many people would come to him, and so many of them were trying to receive blessings, but their motivations were to get blessings for their material life or material enjoyment. Srila Babaji Maharaj was so disgusted by that, and he came and began doing his bhajan, locking the door of this latrine. So the local government officials, they began to understand that he was there, and they approached, requesting him to open the door, telling him, "Oh Babaji Maharaj, we want to build a kutir for you, that you can do your bhajan very nicely and peacefully." And Babaji Maharaj would simply answer, "Oh, I am very sick. I cannot come and open the door. I cannot come." So no one could gain entrance and get his holy darshan. But one time, Sri Vinodi Hari Brahmachari, he was sent there by his Guru Maharaj, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and he went along with his auntie and one other Vaishnava. And when they came there to the door, they also knocked on the door and requested Babaji Maharaj to give them entrance, darshan. And he also told, "Oh, I am sick, I cannot come." But then they told him, Babaji Maharaj, our Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he has sent us to have your holy darshan. Please be merciful to us. Then Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, he at that time, he opened up that door and he brought them inside and locked the door. And they had the darshan of this Param Mahabhagwat, who was completely absorbed in Navadvip Dham, seeing the transcendental Chintamani Dham. And at that time, Srila Babaji Maharaj, he saw this beautiful Brahmachari before him, full of all good qualities. And he placed his lotus feet on his head and gave him blessings. And he said, "I am taking away all of the troubles and difficulties that you will encounter in your life. Now you boldly can preach this message of Chaitanya Mahaprabhu." And they heard some Harikatha from Sri Babaji Maharaj, and after that they took his leave. So later on, when Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj became the great Acharya and had started the Gaudiya Vedanta Samiti, with starting so many mutts and temples and reviving the preaching mission of Chaitanya Mahaprabhu, of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, with so much opposition, but yet he persevered, and he would always remember, once he was remembering and weeping, that, "Oh, Babaji Maharaj, he has given his mercy to me." And that is why, no matter how many obstacles came in the path of my preaching, I have been able to persevere by the blessings of Babaji Maharaj. So this great Vaishnava personality, who served untiringly Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, after his disappearance, everything ground to a halt. All the printing of all the Shastras, all the preaching in Sankirtan, so many Brahmacharis went back to their homes. Everything was practically stopped. And now, Sri Vinodi Hari Brahmachari, he took the mercy of his Gurudev And with great Guru Nishtha, he began to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu. He took sannyas from Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, and he began the Gaudiya Vedanta Samiti. At this Gaudiya Vedanta Samiti, there were three founders of that. One personality was also the great Acharya, who preached the message of Chaitanya Mahaprabhu all throughout the world. That is His Divine Grace Nitya Lila Pravishna, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. And that personality, he co-founded Gaudiya Vedanta Samiti with Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. And one third personality, it was Bhaktivedanta Vaman Maharaj, So that means that the relationship between Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj and our Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj was very, very intimate. And once I remember our Srila Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayan Maharaj, he was telling us, do you know why your Guru Maharaj took sannyas from my Gurudev? And then he explained to us, because they were so near and dear, intimate bosom friends. So I contemplated this and I began to understand. And I began to ponder, understanding the great qualities of Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. How he was such a fearless preacher. No matter how much opposition would come, he would defeat that opposition, roaring like a lion. Same qualities were in my Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. How he fearlessly went to the Western countries and faced all opposition from every direction, all impersonalism, Mayavadism, atheism, and all the bogus scientific philosophies of the modern day. How he challenged them, how he boldly crushed them in the same way Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Very fearlessly and boldly, he would challenge anyone. There's one incident where a communist leader in Bengal named Jyoti Babu. This person was at that time chief minister of Bengal, and he was atheist. And Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he was leading a Sankirtan party to the southern regions called Sundarban. At that time, there was a very big flood in Bengal. Bengal gets floods from time to time. And so many of the farming areas had been flooded. Persons' crops had been destroyed. So Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj came there to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu and to give real mercy to all these Jiva souls. So when he came there, at the same time, Jyoti Babu, along with some of his associates, had come there to examine the damage that was done in the flood area there. So, when he came, he arrived in his vehicle, and he came out of his vehicle, and suddenly he saw this party of saffron-clad sannyasis and brahmacharis. So he addressed them, and he said, "Who are you? What are you doing here?" Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he answered, "We are here. We are from the Sri Gaudiya Vedanta Samiti. We have come here to preach the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu and to collect some grains and so forth for the upcoming Navadvip Dham Parikrama." So then Jyoti Baba, he looked at, in a very proud, arrogant way, he looked at Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. "Oh, you have come here to collect some alms? Can't you see that this whole area here has been flooded? That these people's lives have been devastated by this flood? All of their crops have been destroyed, and you've come here to beg alms from them?" Then Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he looked at him very fearlessly and he said, "Oh, a flood? What flood? What flood are you talking about? Where is this flood? I see that even no flood has come to extinguish the cigarette that you have in your hand. But we have come here to extinguish the blazing fire burning in the hearts of the Jiva souls for for lifetime after lifetime in this material existence since time immemorial, that they have forgotten their eternal relationship with Krishna. We have come by to extinguish that flood by giving the Harinam Sankirtan movement to them. But what kind of flood is actually coming? Oh yes, the flood of the devastation of this material world coming every day of Lord Brahma, coming and destroying all the jivas. That is the real flood that we have come to save the jivas from. So now, Jyoti Babu, he looks at Bhakti Pragyan Kesha Maharaj and he says, oh, you people, you are ruining our country. You are trying to preach this ancient culture. Don't you know that you are simply ruining our country? You are like parasites, just trying to leech off society. So then Srila Kesha Maharaj, he very boldly challenged back and he said, oh, but persons like yourself, you're advocating karma, that people should just do hard work, because this is the philosophy of the atheists, the communists, just do hard work and enjoy the results. Oh, we have seen that persons like you, you are ruining the whole Vedic culture, the whole of India, you are ruining by trying to bring this Western atheistic culture to India. So many persons have been there in the history of India, like Ravana, like Hiranyakashipu, like Jarasandha, Kamsa. We have seen what kind of ends did they come to? Very bad ends by advocating karma. So in this way, Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, he very boldly reached back to this Jyoti Babu, and he completely defeated him. Jyoti Babu had no more words to speak, and he just, in exasperation, he left that place. So Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, in this way, he was such a bold and fearless preacher, and he took the message of Chaitanya Mahaprabhu far and wide throughout India, and by his inspiration, giving sannyas to our Gurudev, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, in this way, like his own arm, he also inspired him, gave potency in his heart to enable him to go to the whole world and bring this message of Krishna consciousness, of Chaitanya Mahaprabhu, of the Harinam Sankirtan movement, to all the suffering jiva souls throughout the world. And in this way, we have been introduced to this Harinam Sankirtan movement through the combined mercy of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, and now coming through the mercy and their empowerment through our Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, who is praying to the devotees from all over the world, giving them this Sankirtan movement, and carrying on this message, establishing the deep Siddhantas, the truths of the Rupanuga Sampradaya, which all of our acharyas wanted to give. He is the living representative of these acharyas. So we bow down at his lotus feet and beg him humbly that we may serve his lotus feet. And by serving his lotus feet, we are serving our Rupanuga Buddha Varga. Bhavisa Bhavisa
Very good. Sriman Padmanabha Maharaj glorified our Gurudev in so many ways. Ab ekhon Sriman Bhaktivedanta Puri Maharaj Bangla Bhashate Alpa Shabdete Guru Maharaj kuch vishesh katha महिमा वर्णन कर जा
Namo yam Vishnu Padayo आचार्य सिंह रूपिने श्री श्रीमद भक्ति के प्रज्ञान के समोदिनाय शास्त्रितानंदोपाले जीवादुखे सदर्थाय श्रीरामो प्रेमदायिने रवि गौरचंद्राय राधिकामयि तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सर्वाग्रे परमारब्धतमोदय कृपापद्मं नित्यलीलाभीष्टं विष्णुपादाष्टोत्तरसदस्य श्रीमद् भक्तिवृत्त वामन गोस्वामी महाराजे श्री चरण सरदी यदिने अनंत शास्त्रम दंडवत प्रणति ज्ञापन तत्पश्चात मदीय सुखा गुरुजीलाभीष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्तिवृत्त त्रिविक्रम महाराज परिप्राज आचार्य भजगदंडी स्वामी भक्तिवृत्त नारायण गोस्वामी महाराजे श्री चरण सरदी यदिने अनंत आज परम सौभाग्य आज जे तिथि के अवलम्बन करे हमारे परम गुरु पाद पद्म नित्यलीला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज तेरे अप्रकट लीला ग्रहण करेछेन নিত্য লীলায় তিনি প্রবিষ্ট হয়েছেন, তাই এই তিথি আমাদের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়। পরম গুরু মহারাজের জীবন আদর্শ শ্রীল পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজের নিকটে যে সমস্ত কিছু কিছু শ্রবণ করেছি তা থেকে কিছু স্মরণ করে আলোচনা করে আমি নিজেকে ধন্য করতে চাই। পরম গুরু মহারাজ তিনি তার সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলতেন, তিনি হচ্ছেন আচার্য কেশরী। আচার্য জগতে অনেক থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি ছিলেন আচার্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবং তিনি বজ্রাদি কঠোরাদি মৃদুলি কুসুমাদি তার একটি বিশেষ চরিত্র ছিলেন। জগতের বিশেষ করে বহির্মুখ মায়াবাদগ্রস্ত জীবের এবং মায়াবাদীদের নিকট বা অপসম্প্রদায়ের নিকট তিনি অত্যন্ত শূন্যস্বরূপ, কিন্তু তার সেবকগণের নিকট শিষ্যগণের নিকট তিনি অত্যন্ত বৎসল। তখন অত্যন্ত তিনি কমনীয়, কুসুম অপেক্ষাও কোমল হৃদয়, তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশ তদন্তর্গত বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানারীপাড়া নামক স্থানে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করে অত্যন্ত তরুণ বয়সে যখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার চলছিল, ঠিক সেই সময় সেই তিনিও আন্দোলনে সামিল ছিলেন। তিনিও একজন খুব বিশাল বিপ্লবী ছিলেন। পরবর্তীকালে তার মায়াপুরে থাকাকালীন তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই আন্দোলন ইত্যাদি পরিত্যাগ করে তিনি প্রভুপাদের সান্নিধ্যে এসে এই ভগবত আন্দোলনে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কোন এক সময় শোনা যায় যে যখন বড়লাট ছিলেন তখন তদানীন্তন কালে অ্যান্ডারসন সাহেব তিনি ভিজিটিং করতে আসবেন মায়াপুরে। তার আসার পূর্বে তার সমস্ত ডিপার্টমেন্টাল ব্যক্তিগণ তারা এসে সেই সব স্থানে কোন রকম বিপ্লবী আছেন কিনা, কোন বিপদ আছে কিনা সেই প্রশ্ন জানবার জন্য তারা এসে দেখেন যে এখানে একজন বড় এনার্কিস্টের লিডার বর্তমান রয়েছেন। সুতরাং এখানে অ্যান্ডারসন সাহেবের যাওয়া নিরাপদ নয়। এই বলে তার কাছে যখন রিপোর্ট দেয় তখন অ্যান্ডারসন সাহেব আবার করে এসে প্রভুপাদের কাছে যখন জানতে পারলেন, প্রভুপাদ বললেন যে হ্যাঁ তিনি বিপ্লবী ছিলেন বটে, কিন্তু বর্তমানে সেই বিপ্লব পরিত্যাগ করেছেন, সেই বিচারধারা পরিত্যাগ করেছেন, এখন এই কঠিন আন্দোলনে যোগদান করেছেন, সুতরাং তার সেই বিপ্লব আর নাই। অ্যান্ডারসন সাহেবের সঙ্গে তিনি সেখানে দেখাও করেছিলেন, বহু উন্নত সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি অত্যন্ত বৈরাগ্যকর জীবনযাপন করেছেন। বিশেষ করে প্রভুপাদের সেই সময়ে শিক্ষা ইত্যাদি খুব বিশেষ হতো না, এমনকি তখনকার দিনে এই সজনে পাতা যেগুলো খুব সাধারণ খাবার জিনিস, পশুর খাদ্য প্রায়, সেই রকম সজনে পাতা সিদ্ধ করে সেই সাপ সিদ্ধ করে জীবনযাপন করে তারা গুরুপাদ পদ্মের সেবা আদর্শ স্থাপন করেছেন। এটি পরম গুরুপাদ পদ্মের একটা বিশেষ জীবনী দেখা যায়। আরো তিনি যখন সেখানে ছিলেন সেখানে সমস্ত মায়াপুরের স্টেটে জমিদারের মতন সমস্ত তিনি ম্যানেজার হয়ে সমস্ত তার বাধা বিপত্তিকে দূর করিয়ে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছিলেন এবং সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় এবং সমস্ত প্রজাগণ তাকে বিনোদবাবু বিনোদবাবু বলে সম্মান প্রদর্শন করছেন। তিনি সবসময় সুট কোট ইত্যাদি দলিত অবস্থায় ঘোরা করতেন, বিচরণ করতেন এবং অদ্ভুতভাবে জমিদারি কায়দায় তিনি সেই সমস্ত প্রভুপাদের সম্পত্তিতে সমস্ত সুষ্ঠুভাবে সব রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। পরম গুরুদেব পরবর্তীকালে খুব সম্ভব 1941 তিনি যখন গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম ওই বাগবাজার নিকটস্থ বোসপাড়া লেনে তিনি সেই ধারাবাড়িতে প্রেস ইত্যাদি করে সমস্ত গৌড়ীয় পত্রিকা যেগুলো অবলুপ্তি হয়ে গেছিল সেইগুলোকে পুনঃপ্রকাশ করে এবং সর্বপ্রথম তিনি এই গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সম্প্রদায়কে সংরক্ষণের জন্য তিনি সিদ্ধান্ত রত্নম বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর যে সিদ্ধান্ত রত্নম গোবিন্দ ভাষ্যপীঠম তিনি সেটি প্রচার করেছেন এবং সেটি মুদ্রণ করে সমস্ত জগতে যে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই অচিন্ত ভেদাবের তত্ত্বের উপরে সংরক্ষিত এবং আরেকটি নিজের জীবনে তিনি সব থেকে বড় গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন সেটি হল মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব বিজয়, যার দ্বারা তিনি সমস্ত মায়াবাদকে প্রখরভাবে খণ্ডন করেছিলেন। তো সেইখানে বোসপাড়া এনে তিনি যখন বিরাজ করছেন তখন অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা, এক সময় তার বিশেষ গুরু ভ্রাতা বন্ধু এসে উপস্থিত হয়েছেন, তিনি বন্ধু বৎসল কি করবেন, তাকে কিভাবে আপ্যায়ন করবেন, কিভাবে সেবা করবেন তিনি নির্ণয় করতে পারছেন না, কেন অপরদর শূন্য প্রায়, এবং সবাই টেবিলের উপরে একটি উপর থেকে চড়ুই পাখি সে একটি পুটলি উপর থেকে ফেলে দিল, তার মধ্যে সম্ভবত 39 পয়সা তখনকার দিনে এইরকম পেয়ে সেই পয়সাকে নিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাজার ইত্যাদি পাঠিয়ে সেই বন্ধুকে তিনি সেবা দিয়ে তাকে নিজে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। এরকম বহু তার জীবনে দেখা যায়। রূপা তাকে কৃতিরত্ন উপাধি দিয়েছিলেন, বহুল বিশেষ শিবাজী মহারাজ তাকে বিশেষ করে আশীর্বাদ করেছিলেন তুমি নির্ভীকভাবে জগতে গৌরবাণী প্রচার করো এবং ভাগবত ধর্মের প্রচার করো। সব থেকে তার ধর্মের প্রচারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সকল সময় প্রায় ওই গোবিন্দ বিজয় শ্রীমন্ত ভাগবতের গোবিন্দ বিজয় গুপ্তায়ন দারুবাত্যায়ন গুরুপ এইরূপে ব্যাখ্যা এবং একাদশ খণ্ডের ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা জগৎকে এবং মায়াবাদ খণ্ডন এবং বাংলাদেশে বিশেষ করে বঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ওই আওল বাউল ইত্যাদি সমস্ত 13টি অপসম্প্রদায় মেদিনীপুরে সাউলি সম্প্রদায় ইত্যাদি তাদের সমস্ত স্বকীয় পরকীয় পরকীয় অপেক্ষা স্বকীয় শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি সমস্ত ভ্রমকে দূর করার জন্য তাদের সঙ্গে মামলা পর্যন্ত করেছেন। তিনি মামলাকে কখনো ভয় পেতেন না, তিনি মামলাকে রাধারানীর সেবা বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি এইভাবে জগতে অত্যন্ত কুঠার জ্ঞানের কুঠার নিয়ে তিনি ভক্তির সমস্ত বাধক সেই সমস্ত জ্ঞানকে তিনি নির্মূল করে দিয়েছেন। এমনকি মায়াবাদে খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বর্ণনা করেছেন যে ভগবানকে তোমরা যে ব্রহ্মকে আনন্দময় বলছ সেই ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন সবই যদি নেগেটিভিটি হলো সুতরাং সেটি আমি আনন্দময় কি করে বলবো, সেটি পৃষ্ঠময়, এর মধ্যে কোনো তফাৎ নাই। পৃষ্ঠময় আনন্দময় এর মধ্যে উপাসক নাই, সেবক সেবক নাই, আস্বাদক নাই, সুতরাং সেটি আনন্দময় এটা কখনো বলা যায় না, সেটা পৃষ্ঠময় মনে করতে পারে। এইভাবে তাদের সমস্ত মতকে দূরীভূত করেছিলেন, এমনকি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন বচন দিয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে উদাহরণ দিয়ে যে শঙ্করাচার্যকে বৌদ্ধরা এক সময় হারিয়ে দিয়ে বিচারে পরাস্ত করে তাকে ওই তত্ত্ব তৈল কটায়ের মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিলেন। এও পর্যন্ত তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত মায়াবাদের জীবনের মধ্যে যারা আলোচনা করেন তার মধ্যে প্রকাশ পাবেন, দেখতে পাবেন কি অদ্ভুত যুক্তি এবং প্রামাণিক বচন সমস্ত দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। অতএব সেই মহাপুরুষের শিক্ষণে আমার বিনম্র নিবেদন, তিনি কৃপা করুন, তার কৃপা আশীর্বাদে আমরা যেন তার বিচারধারা গ্রহণ করে তারই মতন বিচারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, এই বলে আমি আমার পুষ্পাঞ্জলি বাঞ্ছা গল্পকে
হরি মহারাজ। গুরু মহারাজে কতগুলি বৈশিষ্ট্য বর্ণন করলেন, কীরকমভাবে মায়াবাদ খণ্ডন করেছেন, কীরকমভাবে ভগবানেতে তার আত্মবিশ্বাস, তার গুরু ভাইকে আদর আপ্যায়ন করতে গিয়ে কীরকমভাবে চড়ি পাখি তাহাকে কিছু পয়সা ফেল দিল সাত টানা না কত, আর তদ্বারা তাহার ভাই গুরু ভাইকে আদর ইত্যাদি করলেন, তারপরে কীরকমভাবে মায়াবাদীর বিরুদ্ধে তারপরে স্মার্ট ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে যত মত তত পথ রামকৃষ্ণ মিশনের মত ইত্যাদিকে তিনি সুন্দরভাবে তো খণ্ডন ইত্যাদি করে দিয়েছিলেন। এখন শ্রীমান ভক্তিবেদান্ত নেমি মহারাজ সংক্ষেপে কিছু বর্ণন করবেন।
Sanyas Guru, Rupa Nugavara Shishima Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Maharaj. At the lotus feet of my para-gurudev, Sri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, the lotus feet of Rupanoga Jindandigan, all assembled Vaishnavas, Vaishnavas, and in Krishna. We gather together here, to glorify our wonderful Srila Parangurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Our Srila Gurudev, he's explained that the motto of our society should be Prema Maitri Kripa. These are the very important characteristics of the Majjhima Adhikari. That he's offering prema, anyam ilashita shunyam, yana karmani namatam, anupuyena krishna nushilam, bhakti uttama. This prema to Krishna means Radha Krishna Gauranga. And he's practicing maitri towards the devotees. And kripa, compassion to the fallen conditioned souls who are not envious. And also upeksha, he's neglecting those who are envious. So our Srila Parangurudev, he's the ideal example. He set the ideal example. Praying, we've heard how he established Radhavino Bihari, the deities of Krishna in the mood and complexion of Srimati Radhika. Krishna in separation from Srimati Radhika. His Guru Maharaj said, we're not so much interested in Radharani meditating, Srimati Radharani meditating on Krishna. We want to see how Krishna is meditating on Srimati Radharani. So, Srila Parangurudev, he was following this mood when he established his deities. Actually, although he's an ideal example of Majjhima Adhikari, but yet we understand that he's Uttam Bhagavat, who's come to the Majjhima platform in order to fulfill the desires of Radha Krishna, Gauranga, and to follow the Acharyas. So, the eternal associates, by the desire of the Lord, the eternal associates of the Lord, come to fulfill the role of sadhak, so that we have an ideal example. On one occasion, Srila Parangurudev was with Srila Gurudev and another devotee. He was describing the temple. So he said there would be one blue step and one golden step. And there will be one arun. One step will be called arun, dawn color. So the other devotee said, oh, Srila Guru Maharaj, why this color? So he said that, oh, this is for one eternal servant of the Lord who's giving vinod, who's giving delight to the Supreme Lord. And then he became very, very overwhelmed with love. So our Gurudev has explained that at that time he was describing his eternal form. He's not actually sadhak, but he's Nityasiddha who's come to perform the role of sadhak. Maitri. There are three levels of maitri. One is to the very advanced devotees, Uttam Bhagavat, and to them we have to serve. And to equals, and then to junior Vaishnavas. So levels of maitri. Our Parangurudev was the ideal example on all levels. How he served his Guru Maharaj and the Guru Parampara. He was ideal seva. Although he was born in a zamindar family, very, very rich family, very competent, but yet he would go out with a collection box. This collection box was made so that the slot would only accommodate a very small coin. And he was collecting small coins and giving Hari Katha. And on one occasion, his Guru Maharaj was in motor car coming past. And he saw Vinod Brahmachari in a hot sun. He was resting from his labors with his head on this collection box. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he began crying, oh, just see that how he's come from such a great family, and now he's taken the most humble position. In the temple, our Parangurudev, sometime at the very beginning, there was no money, no money for food at all, no money for plates even. They were taking leaves off the trees, cooking and eating off the concrete. no facility at all. And when Srila Saraswati Prabhupada came, they said, oh, no, Prabhupada, we're just practicing a little austerity to reassure him. He was ideal seva. After Srila Saraswati Prabhupada disappeared, he continued all the practices like Parikrama, Gaudamanda Parikrama, Rajmanda Parikrama. He continued. He again revived the printing of the books. He brought many of his godbrothers and helped them to continue their devotional service. He defended the Guru Parampara. He defended the teachings against, we've heard, how he defended against the Mayavadis, against communists. Like this, he was defending our Parampara. Maitri, he was very, very affectionate to all his godbrothers. They all used to call him Vinodda. And he would go to such great lengths. He would go to great lengths to help any of them, even trying to get the on one occasion, Srila Gurudev has described how he went with one of Srila Param Gurudev's godbrothers collecting. And Srila Param Gurudev came to know that his godbrother had actually kept a little of the money aside for future expenses. So Srila Param Gurudev said, where's the extra money? And his godbrother brought the extra money. And Srila Param Gurudev counted the money and then gave it back. So his godbrother became a little angry. And then Srila Param Gurudev explained that an ordinary devotee, even, what to speak of an ordinary person, an ordinary devotee cannot digest the poison that is in the money from materialists that he could digest. So he was such an ideal example of Maitri. And Kripa, how he preached. Srila Gurudev has described how he was going with his Guru Maharaj. Preaching, sometimes he's described on one occasion, 62 lectures in 60 days. Not sitting like this in comfortable surroundings with microphones, everything like this. Preaching to huge crowds without amplification. And Gurudev has explained that they were sitting like painted dolls, completely spellbound for an hour, hour and a half, or 2 hours. And Srila Param Gurudev gave his very beautiful Harikatha. Srila Param Gurudev has preached not only personally, but also through his disciples. Our Srila Saraswati Prabhupada, on one occasion, he prophesied to his whole assembly of disciples when the preachers had just returned from the West. He said, so the preachers have come, they've been a little successful. But I prophesy that in the future, maybe in the distant future, one of you will come and he will bring the whole world with you. And he was looking at the crowd and then his glance and his eyes fixed on one personality. That was my Guru Maharaj. At that time he was very apparently insignificant Grahastha. That prophecy is also being fulfilled by our Srila Gurudev. Our Srila Gurudev has traveled the world how many times? 26 times in 12 years. I think twice as many as my Guru Maharaj. So, Srila Param Gurudev, he sent my Guru Maharaj. He gave sannyas. He insisted that my Guru Maharaj took sannyas. My Guru Maharaj said that actually he had forgotten the instructions of his Gurudev to preach. And then when he took sannyas, during the ceremony, he remembered. And when it came time to speak, so he began, after it was time to speak, so he began speaking in English. They said, Swamiji, why are you speaking in English? He said, I'm practicing. So, my Guru Maharaj, he was preaching all over the world, very broadly. And then, Srila Gurudev, at the same time, he was remaining in one place and training up apparently a small handful of disciples. Very, very intensive. Extensive and intensive. And then, 1996, those two streams came together. When Srila Gurudev began to preach all over the world, he began to collect the dried up plants, where there'd be no rain, no water for so long. We were all withered. And he came with such kindness. He came, in my case, he came to our front door. He came into the house, he sat down, gave out cookies, invited the love and affection, he won our hearts. One of my godbrothers, he said, you know, somebody told Gurudev that I was Prabhupada's disciple. And Gurudev came to me like this, with his arms like this. There were tears in his eyes. And he said, I've come to help you. So, Srila Gurudev has collected, he's revived so many disciples of my Guru Maharaj. And we see how the traditions, these two streams are coming together. My Guru Maharaj is Gauranga Dhyeti in Shikeshati Gaudiyamad. It's standing beside Shishi Radha Manodahari too. Gauranga is not different from Radha Krishna. So my Gurudev is Gauranga, and Srila Paramgurudev is Radha Manodahari in Keshati Gaudiyamad. None different, we see. The first year, 1996, when we came to Keshati Gaudiyamad, which is like the heart of Srila Paramgurudev. So I said to Srila Gurudev, I said, oh, now I'm seeing that this is Chaitanya Mahaprabhu's family. Now I'm coming to Chaitanya Mahaprabhu's family. And how I explain, how I appreciate it, how he and his handful of very beautiful disciples were training us up, bringing us into the tradition. He said, yes, now we will have this one as it is. He was very happy. So these are the miracles of our Srila Paramgurudev. So on this day, I take shelter of his lotus feet, and I pray to him that he'll kindly give me grace to serve his two very dear disciples, his sannyasa shiksha disciple, my Guru Maharaj, Nityananda Prabhu Shishi, my Bhaktivedanta Swami Maharaj, and his very dear and lovely diksha disciple, my shiksha and sannyasa guru, Shri Rupa Nuga Vara Shishi, my Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Hare Krishna.
Very good. Kono samay Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur amader Guru Maharaj ke ektu daklen Vinod Bihari तुम्हार माँ बहु असुस्थ एक बार तुम्हें तुम्हारे चाचे देखा करते अत तुम्हें बाड़ी जिए माँ संगे देखा कर गुरु महाराज को उत्तर दिले ना चले आसले आ घरे कोनाते बसे हरिनाम करते लगे তার মায়ের বাড়িতে যান নাই। দ্বিতীয় দিনেতে প্রভুপাদ বললেন শিষ্যগণকে, দেখো তো খোঁজো তো বিনোদ আছে না, তার মায়ের ওখানেতে গিয়ে সে আমি বলেছিলাম যেতে। ওরা বলি ও তো ঘরে বসে হরিনাম করছে। তারপরে তিনি প্রভুপাদ ডাকলেন, তুমি কেন গেলে না বাড়িতে, তোমার মা একবার তোমার দেখা করতে চায়। প্রভু কোটি কোটি জন্মের পরে আপনার চরণ আশ্রয় করেছি, কতবার কি কি জন্ম আমার হয়েছে, এবার আমার জন্ম হয়ে আপনার চরণ আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আমি যদি বাড়ি যাই তো মা বলবে, বেটা আর তোমার ছেলেরা কেউ সংসার দেখলে না, তুমি বিবাহ করে সংসার দেখো, তোমার বড় জমিদারি আছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি কি করব, তার আদেশ পালন করব না আপনার সেবা করে আমার জন্ম সার্থক হবে, তাতে মায়েরও জন্ম সার্থক। তখন প্রভুপাদ আর কিছু বললেন না, দেখে আশ্চর্যচকিত হয়ে গেল। আপনারা শুনেছেন যে সে প্রভুপাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ কিছু বলেছে, মন্তব্য করেছে, তখন তাহাকে তুলো ধুনো ধুনো দিতেন। তুলোকে যেরকম ধুনে রাজাই বানার, ওরকম তুলো ধোনা করে ছেড়ে দিতেন। কোন সময় সহজিয়া কি জায়গা, সাউরি সহজিয়া, ওরা ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের একটি শিষ্যের ধারা। ওরা ওরা পত্রিকাতে লিখলো যে গৌড়ীয় মঠ শুধু আঠি চুষলো, রস কিছু তারা জানে না যে কাকে রস বলে, অর্থাৎ মাধুর্য রসের আলোচনা ইত্যাদি তারা করে না। সবসময় এই বর্ণাশ্রম ধর্ম শ্রবণ কীর্তন স্মরণ এই সবগুলি প্রচার করে, কিন্তু মাধুর্য রসের তারা কথা জানে। তখন উনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে একটা প্রবন্ধ সাউরি শালা ভিতে গলত দিয়ে দিলেন, আর আমি চারটি প্রবন্ধ আরো লিখলাম, তাতে তারা মানহানি কেস করলো। তারপরে কলিকাতার আমি বললাম গুরু মহারাজকে যে একটু ভালো উকিল করুন যাতে হারতে না হয়, তখন তিনি ওখানকার সবচেয়ে বড় উকিলকে করলেন। তিনি মেদিনীপুর যেয়ে বলে যে আমি প্রমাণিত করে এসেছি সাউরির শালা ভিতে গলত। তখন যা ছিল বলে যে সে আপনি তার সঙ্গে সুলভ করালেন আর বিশেষ কিছু করবেন না। তখন গুরু মহারাজ বলেন আমরা সন্ন্যাসী সত্য কথা বলবার জন্য এসেছি, এই জন্য আমরা সত্য কথা থেকে বিচ্যুত হব না, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে লিখব। তিনি নিজেকে সুধার করেন, মামলা তুলে নেন, তুলে নেন, কিন্তু আমি এ থেকে চুলবার নাব না। অন্তমধ্যে তারা ক্ষমা যাচনা করে দিয়ে কেসটা তুলে নিল। কোন সময় মথুরাতে গুরু মহারাজ গিয়েছিলেন, আমি একটু তাহাদের সর্বেশ্বর পত্রিকা নিয়ে দেখাইলাম, ওরা বলছে যে কেশব কাশ্মীর গিয়েছিল মহারাজ মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভুকে পরাস্ত করে দিয়ে আর তাহাকে গোপাল মন্ত্রেতে দীক্ষিত করেছিল। এই শুনে তিনি একেবারে রেগে আগুন হয়ে যে বলে ধরো কলম, আর তখন তিনি লিখাইতেন। নিম্বাক বলে কোনো ব্যক্তি ছিল না, জীব গোস্বামী তার গ্রন্থে কোথাও লিখেন না, এমনকি অন্য সম্প্রদায়ের আচার্যদের সকলের নাম লিখেছেন ইনার নামে। বলদেব বিদ্যাভূষণ সমস্ত মতগুলিকে খণ্ডন করে দিয়ে তিনি ভক্তিকে স্থাপন করেছেন, তিনি তার নাম কোথাও নাই। এই নিম্বাক হচ্ছেন জালিয়াত, কোনো জালি লোকে করে দিয়েছে। আসলে নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় হচ্ছে, আমরা তারা নিম্বাদিত্য মানি, আমরা নিম্বার্ককে মানি। তখন তারা কেস করলো মথুরাতে, 1,00,000 টাকার মানহানি। তারপরে উকিল বলি যে খবরদার মানহানি মামলা করবেন না, কি কেঁচুয়া করতে সাপ না বেরিয়েছে। ওটা মাধুরম ভরলুক, বড় বড় উকিলরা তার কাছে পরামর্শ করতে যায়, আপনার মামলা তুলে নিয়ে তবে আপনি ঘরে বসুন। তারা তিনি কোন ব্যক্তি দার্শনিক যদি হয় তাহলে হৃদয়ে নীরস থাকে। গুরু মহারাজ একাধারেতে দার্শনিক, অদ্ভুত দার্শনিক, আবার সঙ্গে সঙ্গে কিরকম রসিক কবি। তিনি ভাগবত গৌড়ীয় পত্রিকাতে এমন সব সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন যাতে সকলেই তাহাকে আদর্শ মানত যে অদ্ভুত লেখক। বিশেষ করে আমাদের সময়তে তিনি প্রভুপাদের আরতি আর মঙ্গল আরতি দুটা যে করেছেন সবগুলি হচ্ছে গোবিন্দ লীলামৃতের সার। মঙ্গল আরতি জাগে মঙ্গল হৃদয়ে নাকি ভকত হৃদয়ে, মানে কি মঙ্গল আরতি সকাল বেলার যে নিশান্ত লীলা, নিশান্ত লীলার মধ্যে কি হয়েছিল ওর সারটা ওর মধ্যে বর্ণন করেছেন। ওই সময় তো কোকিল ডাকে আর সুন্দর শীতল মন্দ সুগন্ধ হাওয়া চলছে, আর সেখানেতে ওই রাস ওই সময়তে নিশান্ত লীলার বলে বর্ণন করে দিয়ে কিরকম সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে সমস্ত গোবিন্দের লীলামৃত এসে গিয়েছে। প্রভুপাদ আরতি অদ্ভুত করেছেন। আমি তখন নূতন, যখন প্রভুপাদের আরতি করেছে আমাকে বলেন যে আমার প্রভুপাদের আরতি করেছে কেমন হয়েছে, মঙ্গল আরতি। আমি বলি যে সে বেশ ভালোই হয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত লম্বা হয়ে গেছে। আমি তখন বুঝি না যে গোবিন্দের লীলামৃত কি আর আর কিছু বলে না। আমি পরে যখন জানলাম তখন বলি যে আমি মহামূর্খ, এইসব জানতে না করে আমি উল্টা বলে দিলাম। তা তিনি একাধারেতে রসিক কবি, দার্শনিক, লেখক, বক্তা, সব গুণ সম্পন্ন। ভক্তগণের যে যত গুণ ভক্তের মধ্যে দরকার হয় সব সমস্ত তার। আমাদের পুরী মহারাজ বললেন যে অন্য লোকের কাছে সিংহ, কিন্তু নিজের ভক্ত বাৎসল্য আমরা দেখেছি কিরকম হয়। ভক্তের জন্য তিনি প্রাণ দিতেন। অনঙ্গ মোহন একজন ব্রহ্মচারী, তার টিবি হয়ে গেল রক্ত, সে নিজে তাহার এই সকলই সেবা করতেন। তারপরে সেই সেবা আমি মেঙে নিয়ে আমি করি, আমাকে এই জন্য বিশেষ করে আদর করত। বিক্রম মহারাজ বলতেন যে আপনি এমন সব সেবা করেছেন যে গুরু মহারাজের হৃদয় আপনি জিতে নিয়েছেন। আর আমিও জানি যে তাহার গুরু মহারাজের বিশেষ কৃপা, না হলে এই বিশ্বেতে আমার সব কথা লোক শুনছে, পড়া লেখা কিছু নাই, তথাপি যে শুনছে অতল, এই সমস্ত গুরু মহারাজের কৃপার জন্যই এই সারা বিশ্ব আমার কথা শুনছে। আর এই রকম হয় বিদ্বান ধুরন্ধর সব লোক এসে সন্ন্যাস নিয়ে বিশ্বেতে প্রচার করছে। গৌর প্রেমানন্দে বলে দাও, তুমি বলে দাও। ও ফার্স্ট প্রোগ্রাম যাও।
কাল হলো
বাংলাতে বলবে,
বাংলা আজকে আমাদের প্রোগ্রাম সকালে মঙ্গল আরতি করে এখানে পাঠ কীর্তন, আর সাতটার মধ্যে আমরা এখানে জল খাওয়ার নিয়ে আমরা কালিয়া দলে যাব। কালিয়া দল মদন মোহন মন্দির
না প্রথমে যাব,
রামদানন্দ সরস্বতী পার্ক আর বিনোমন্ডল ঠাকুরের স্থান
কালিয়া দল,
কালিয়া দল মদন মোহন অষ্টসখী অদ্বৈত বর আর বাঁকে বিহারি মঙ্গলারতিতে আপনারা যোগদান করবেন, তারপরে অল্প জল খাওয়ার প্রসাদ নিয়ে আমরা চলে যাব। অনেকে